24 اکتوبر دن بھر دن منگلوار، میں ہوں ریحان فضل۔ چین کے سمویدھان میں شامل ہوا جن شی پنگ کا نام، اب ان کا درجہ ماؤ اور دینگ شیو پنگ کے برابر۔ راجستھان میں بی جے پی سرکار نے ویوادآسپد بل کو ٹھنڈے بستے میں ڈالا۔ ذکر ہوگا ان بھارتی کسانوں کا جو کر رہے ہیں ودیشوں میں کھیتی۔
تقریباً سبھی دے کے آتے ہیں یہاں پہ 8-10 لاکھ روپیہ، اور جہاں اٹلی میں اس کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے، نہ کوئی ایک سال نہ کوئی دو سال، کہیں ایسا ہے کہ 5-6 سال تو 10 لاکھ ہی پورا نہیں ہوتا۔
لیکن پہلے وشو سماچار۔
بی بی سی سماچار کلدیپ مشرو سے۔ چین کی ستاداری کمیونسٹ پارٹی نے اپنے نیتا اور دیش کے راشٹرپتی شی جن پنگ کو ماؤ سے تنگ کے بعد اپنا سب سے شکتیشالی نیتا بنا دیا ہے۔ اپنے پنچورشیہ سمیلن کے آخری دن جن پنگ کے راجنیتک درشن کو پارٹی کے سمویدھان میں شامل کر لیا گیا۔ ماؤ سے تنگ کے بعد وہ دوسرے ایسے نیتا بن گئے ہیں جن کا نام پارٹی سمویدھان میں ان کے جیوت رہتے شامل کیا گیا ہے۔ بی بی سی کی چینی سیوا کے سمپادک کا کہنا ہے کہ اس نئے دور کے سنکیت ایسے ہیں کہ پارٹی اب گھریلو لکشیوں پر انوشاست ہو کر آگے بڑھے گی اور ودیش میں بھی اپنی استھتی مضبوط کرے گی۔ 1980 کے دشک میں آرتھک سدھار لانے والے ڈینگ شیاوپنگ کے دوبھاشی رہے وکٹر گاؤ نے کہا، اس کا مطلب ہوگا کہ راشٹرپتی شی جن پنگ اور آنے والے سمے میں ان کے راجنیتک فیصلوں میں اب کافی وزن ہوگا اور پورے چین میں ان کا پالن کیا جائے گا۔ یہ چین کے لیے ایک نیا دور ہے، یہ سچ میں چین کے لیے ایک ایتہاسک گھٹنا ہے۔ یہ تھے وکٹر گاؤ کے شبد۔ کینیا میں سپریم کورٹ کل اس پر سنوائی کرے گا کہ گروار کو ہونے والے چناؤ پہلے سے طے کارکرم کے تحت ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ سنوائی ایک آپات یاچکا پر ہوگی جس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ وہاں کا چناؤ آیوگ نشپکش چناؤ کرا سکتا ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے اگست میں ہوئے چناؤ کو انیمتتاؤں کی وجہ سے رد کر دیا تھا۔ مکھیہ وپکشی نیتا رائلا اوڈنگا نے گروار کو ہونے والے چناؤں کو ڈھونگ بتاتے ہوئے اپنے سمرتھکوں سے اس کا بہشکار کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے بی بی سی سے کہا کہ اگست میں ہوئے چناؤ کی نگرانی کرنے والی سنستھا میں ضروری سدھار کرنے میں پرشاسن ناکام رہا۔ 2007 میں کینیا کے وادت راشٹرپتی چناؤ کے بعد ہوئی ہنسا میں 1000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ جرمنی کی نو نرواچت سنسد کا برلن میں پہلا ستر شروع ہو گیا۔ دوتیہ وشو یدھ کے بعد سے پہلی بار ہے جب جرمن سنسد میں دکشن پنتھی راشٹروادی پارٹی آلٹرنیٹو فار جرمنی یعنی اے ایف ڈی کے سدسیہ شامل ہیں۔ اے ایف ڈی کے سانسد برنڈ بومن نے کہا کہ یورو اپرواسن اور ان کے شبدوں میں جگنیہ اپرادھوں کے ساتھ اب الگ طرح سے پیش آیا جائے، لیکن باقی پانچوں پارٹیوں نے اسے سویکار نہیں کیا۔ اس سے پہلے سنسد کے انترم اسپیکر ہرمن اوٹو سالمس نے کہا کہ جرمن سنسد میں ایک بدلاؤ ہوا ہے۔ انہوں نے نئے سدسیوں پر دھبا لگائے جانے کے خلاف چیتاتے ہوئے کہا کہ جرمنی کو بحث کی سنسکرتی کی ضرورت ہے۔ حالانکہ انہوں نے سانسدوں کو سوشل میڈیا کی نسل بھیدی، یہودی ویرودھی یا لینگک بھید بھاؤ کی آوازوں کو جگہ نہ دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا، سماج کے وچاروں کی وودھتا سنسد میں دیکھنی چاہیے۔ میں وشیش نیم بنا لے، کسی کے الگاؤ یا کسی پر ٹھپا لگانے کے خلاف چیتا رہا ہوں۔ ہم سب کے پاس ایک سا جنادیش ہے، ہمارے ایک سے ادھیکار اور ایک سے کرتویہ ہیں۔ یہ تھے جرمن سنسد کے انترم اسپیکر ہرمن اوٹو سالمس کے شبد۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی سماچار۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے دیش کے لال ساگر والے کنارے پر ایک نئے میگا شہر پر $500 بلین یعنی 325 لاکھ کروڑ روپے کا نویش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی میڈیا میں آ رہی خبروں کے مطابق 25,000 اسکوائر کلومیٹر کے کھیتر میں پھیلا یہ پروجیکٹ ایک تکنیک ہب بنانے پر کیندرت ہوگا اور مصر اور جارڈن سے جڑے گا۔ اس پریوجنا کا پہلا چرن 2025 تک پورا ہو سکتا ہے۔ سمواددتاؤں کا کہنا ہے کہ کراؤن پرنس تیل کے دور کے بعد کی ارتھ ویوستھا والے سمے کے لیے اپنے دیش کو تیار کر رہے ہیں۔ امریکی ودیش منتری ریکس ٹیلرسن بھارت دورے سے پہلے پاکستان پہنچے۔ مانا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پاکستانی نیتاؤں سے افغانستان کو نشانہ بنا رہے چرمپنتھیوں کے خلاف کارروائی کی اپیل کر سکتے ہیں۔ بی بی سی سماچار۔
دن بھر میں ابھیوادن سویکار کریے ریحان فضل کا۔ चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति शी जिनफिंग के दूसरे कार्यकाल को आज मंजूरी दे दी और उनका नाम और विचारधारा शामिल करने के लिए अपने संविधान में संशोधन भी किया। इस प्रकार शी जिनफिंग अब पार्टी के संस्थापक माओ ज़ेडुंग और उनके उत्तराधिकारी डेंग क्सियाओपिंग के समकक्ष हो गए हैं। कांग्रेस को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति ने कहा, शी जिनफिंग कह रहे थे, हमें उदाहरण के साथ नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। हम नए युग में पार्टी के निर्माण के लिए अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है। हमें पार्टी और देश को मजबूत करने के लिए अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। शी जिनफिंग के शब्द। थोड़ी देर पहले मैंने बीजिंग फोन कर वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से बात की और पूछा कि चीन की राजनीति में इस ताजा डेवलपमेंट का क्या महत्व है।
देखिए, पार्टी संविधान में पॉलिटिकल डायरेक्शन और आइडियोलॉजी दोनों बातें मिलती हैं। चीन में आइडियोलॉजी शब्द उड़ा देने वाली नहीं होती है, क्योंकि चीन में वो पॉलिटिकल डायरेक्शन होता है। और पहले 7 साल माओ ज़ेडुंग का जमाना रहा, डेंग क्सियाओपिंग आए, उसके बाद जब उन्होंने उल्टा काम किया, माओ ज़ेडुंग से उदारीकरण करना शुरू किया, आर्थिक नीति में दुनिया में रास्ते खोल दिए, तो कम्युनिज्म का उल्टा हो गया, कैपिटलिज्म की तरफ गया, तो उनका फिर चला। उसके बाद दो और प्रेसिडेंट आए, यान जिमिंग और हुचिनताओ, उन्होंने कुछ परिवर्तन तो किए लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन नहीं किया और उनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में, पार्टी के संविधान में नहीं आया। अब ये 96 ईयर्स हुए हैं, 96 साल में इस तरह ये लीडर है जिसका नाम संविधान में और जिसके विचार संविधान में साइन किए गए हैं, तो अब तो कोई पीछा हट है ही नहीं। उनका जो कंट्रोल है आज की जनरेशन के रूलर्स का, उसके ऊपर तो टोटल है, उसमें तो कोई दो मत।
लेकिन ये बताइए, नाम इनका ले लिया गया है, उसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन वाकई स्टेचर में आपको लगता है कि माओ ज़ेडुंग के समकक्ष हैं शी जिनफिंग?
रेहन जी, आपके और मेरे मानने न मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में वही दर्जा दिया गया है जो माओ ज़ेडुंग को दिया गया है, और उदारीकरण के जो आर्किटेक्ट थे डेंग क्सियाओपिंग, उनको जो दिया गया था वही दर्जा आज शी जिनफिंग को दिया गया है। तो आज के जमाने में आज का जो पार्टी है और आज का जो पावर स्ट्रक्चर है, जहाँ माओ नहीं है, तो वहाँ शी जिनफिंग टोटल कंट्रोल में है, ये बता रहा है।
पार्टी का जो दूसरी प्लेटफॉर्म है, जैसे सेंट्रल कमेटी हुई, वहाँ भी शी जिनफिंग के समर्थक पूरी तरह से छाए हुए हैं या वहाँ उनके समर्थकों को पीछे हटना पड़ा है?
206 नंबर की सेंट्रल कमेटी है, ये बहुत महत्व रखती है, क्योंकि ये पार्टी के पॉलिट ब्यूरो, जो पार्टी में बड़ा पोजीशन है, जो पॉलिटिकल ब्यूरो, उसमें 25 मेंबर होते हैं, उनको चुनाव की, और उनमें से 7 और मेंबर होते हैं जो कि पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी कही जाती है, जो सही मायने में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ये सारा चुनाव सेंट्रल कमेटी करती है। अब शी जिनफिंग को अपने आदमी इन 7 पोजीशन में अगर लाने हैं, तो सेंट्रल कमेटी में उनको सिर्फ बहुमत नहीं, करीबन 80-90% बहुमत होना चाहिए, जो उनके पास आज है।
लेकिन यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके जो सबसे बड़े समर्थक है वैंग क्विशेन को हटना पड़ सकता है संभवतः सेंट्रल कमेटी से।
नहीं, कोई संभावना नहीं है, उनकी उनका नाम सेंट्रल कमेटी में आया नहीं है। उनकी उम्र 69 हुई है, 68 पार्टी कमेटी के अनुसार रिटायरमेंट एज है, उनका नाम नहीं है। और सवाल ये है कि क्या वो सबसे बड़े समर्थक है, क्योंकि उन पर भी कुछ दिनों से सवाले पूछे जा रहे थे, क्योंकि वो ओवर पावरफुल होने लगे थे। तो इसमें बहुत लोगों को अच्छे नहीं लग रहा है कि उनको मौका नहीं दिया गया दूसरी बार। रिटायरमेंट एज के हिसाब से तो खैर मौका मिलना ही नहीं था। लेकिन एक बात और कही जा रही है, वो ये है कि अगर वो पॉलिट ब्यूरो स्टडी कमेटी में नहीं है, उसके बावजूद एंटी करप्शन का जो काम है वो उनके हाथों में ही रहेगा, ये अटकलें अब लगाई जा रही है, कल शाम तक पता चलेगा।
ये थे बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता। और अब कुछ खबरें भारत से। राजस्थान में बीजेपी सरकार ने जजों और अफसरों को मुकदमों से बचाने के लिए लाए जा रहे कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसे विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। इस प्रस्तावित कानून को लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। राजस्थान में वकीलों और पत्रकारों ने आज इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस कानून के खिलाफ बीजेपी के भीतर भी विरोध के स्वर फूटे हैं। जयपुर से नारायण पारेख की रिपोर्ट।
सदन में हंगामा और सड़कों पर विरोध। पत्रकारों ने जयपुर में विरोध मार्च निकाला और विधानसभा पर प्रदर्शन किया। इसमें शामिल वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी इसे एक बड़े खतरे की आहट मानते हैं।
भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए सरकारी कानून लेकर के आए और बीच में न्यायपालिका को उन्होंने जोड़ लिया है। मैं मानता हूं कि कम से कम इस एजेंडे से सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है कि लोकतंत्र में उसकी आस्था नहीं है। पूरी तरीके से गैर लोकतांत्रिक कदम है, लेकिन इससे सरकार जरूर मैं मानता हूं कि उजागर हो गई है उसकी मंशाएं।
वकीलों ने भी कहा यह भ्रष्टाचार को पनाह देने वाला काला कानून है। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया। सरकार ने पहले विरोध को दरकिनार किया, लेकिन आवाज बुलंद हुई तो सरकार बचाव में आ गई। इसी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ मीडिया से मुखातिब हुए और बोले,
सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) का जितना बेजा इस्तेमाल राजस्थान में हुआ, देश के अंदर 156(3) के अंतर्गत परिवार की मान हानि का काम लोक सेवकों का हो रहा था, इसको देखकर इस बिल को लाया गया। इस सारे समग्र परिप्रेक्ष्य में इस बिल को लाया गया था। क्योंकि इस बिल को लेकर कुछ भ्रांतियां थी, विशेष तौर पर मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे मित्रों की, और महाराष्ट्र के पैटर्न पर जो बिल लाया गया था उसमें थोड़ी सी भिन्नता थी। इन सारे पहलुओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर निर्देश प्राप्त हुए, बिल को सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए। सिलेक्ट कमेटी में सभी दलों के सदस्य रहेंगे और सदस्यों के आधार पर सिलेक्ट कमेटी विचार करेगी और आगामी बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
सरकार अब भी कह रही है कि उसे लोक सेवकों के मनोबल की चिंता है, क्योंकि मीडिया लोगों की ट्रायल करता है। प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी कहते हैं ये कानून खत्म होना चाहिए।
काला कानून जो है पूरे देश के लोकतंत्र की हत्या करने जैसा कानून था। हमने प्रोटेस्ट किया और सरकार को मजबूर होना पड़ा। रातों रात इन्होंने कैबिनेट बुला के और पुनर्विचार की बात करी है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल का और कांग्रेस की ये मांग है कि इस बिल को जो काला कानून जो बनाने जा रहे हैं उसको सरकार वापस ले।
इस कानून पर सत्तारूढ़ बीजेपी के भीतर भी विरोध की आवाजें उठी है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवाड़ी कहते हैं,
इसके खिलाफ हूँ कि बिल लाया ही क्यों गया। सरकार पुनर्विचार नहीं, सरकार तुरंत इस बिल को वापस ले ले, इस ऑर्डिनेंस को समाप्त कर दे, तब तो सरकार जन भावनाओं की कदर करेगी। अगर ये न कर तो प्रवर समिति भेजने का काम किया तो भी उसका हम विरोध करेंगे।
यह तो लोकतंत्र है, ना कोई राजा है ना कोई रंक, लेकिन उस शाही दौर में भी संस्कृत कवि भारवी कह गए हैं, वो राजा कैसा जो हितकारी लेकिन कड़वी बात ना सुन सके। नारायण बारेठ, BBC, जयपुर, राजस्थान।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद शाहिद यूसुफ को जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया है कि यूसुफ को 2011 में दर्ज एक पुराने मामले के आधार पर पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित NIA के मुख्यालय बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है शाहिद यूसुफ और क्या कहती हैं कश्मीर की राजनीतिक जमातें और विश्लेषक इस गिरफ्तारी पर? श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
42 साल के सईद शाहिद यूसुफ एक सरकारी कर्मचारी हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार के एग्रीकल्चर विभाग में विलेज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और इस वक्त अपने जिला बड़गाम के सोएबु गांव में तैनात हैं। शाहिद यूसुफ को मंगलवार को NIA ने दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर्स पर पूछताछ के लिए तलब किया था, जहाँ उनको गिरफ्तार किया गया। शाहिद यूसुफ ने भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से एग्रीकल्चर में BSc की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद RBS कॉलेज से MSc इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई मुकम्मल की, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर में करीब 6 साल तक शालीमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पर काम किया। दो बच्चों के पिता शाहिद यूसुफ ने वर्ष 2005 में श्रीनगर के हैदरपुरा में शादी की। शाहिद यूसुफ को NIA ने वर्ष 2011 के एक टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया है। विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह की गिरफ्तारियों को लेकर भारत सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। पार्टी के प्रवक्ता सईद रुहुल्ला मूसवी कहते हैं,
हमारा मानना यही है कि अगर बातचीत के लिए शुरुआत करनी हो साजगार माहौल उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन चीजों से हमें लगता है कि साजगार माहौल बनाने में मदद नहीं मिलती है।
विश्लेषकों का कहना है कि एक तरफ भारत सरकार बातचीत के दरवाजे खोलने पर जोर दे रही है तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ताहिर मुहिद्दीन कहते हैं,
देखिए ये गिरफ्तारी मुझे भी लगता है कुछ अजीब सी है, क्योंकि कल ही जो इंडियन वजीर दाखला है उन्होंने कल ही ऐलान किया था कि वो मुजाकरात का एक मुजाकराती अमल
شروع کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں, تو ایک طرف مذاکراتی عمل شروع کرنا اور دوسری طرف ساتھ ہی اس طرح کی کاروائیاں جن سے مذاکرات میں کوئی مدد نہیں مل سکتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دلی میں کلیئر معاملات نہیں ہیں.
غور طلب ہے کہ بھارت سرکار نے کل سوموار کو کشمیر سمسیا کے حل کے لیے کشمیر میں سبھی پکشوں سے بات چیت کرنے کی گھوشنا کی ہے. بات چیت کے اس مشن کے لیے پورو آئی بی چیف دنیشور شرما کو وارتاکار کے طور پر نیوکت کیا گیا ہے. بیتے 3 مہینوں میں این آئی اے نے کشمیر میں کئی ایک الگ آبادی نیتا اور کارکرتاؤں کو ٹیرر فنڈنگ کے کیسز میں گرفتار کیا ہے. اس دوران این آئی اے نے کئی دفعہ کشمیر میں الگ آبادیوں اور ویوپاریوں کے دفتروں اور گھروں پر چھاپا ماری کی. این آئی اے نے ان چھاپوں کے دوران کئی سارے ثبوت ہاتھ لگنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. این آئی اے نے کشمیر کے ایک بیوپاری اور ایک فوٹو پترکار کو بھی بیتے دنوں گرفتار کیا ہے. الگاوادیوں نے این آئی اے کی طرف سے کی جانے والی گرفتاریوں اور چھاپا ماریوں کو بھارت سرکار کی ایک سازش قرار دیتے ہوئے کئی بار کہا کہ کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک کو بھارت سرکار کے ان حربوں سے کچلا نہیں جا سکتا ہے. غور طلب ہے کہ سعید صلاح الدین کو اس سال جون میں یو ایس نے گلوبل آتنکی قرار دیا ہے. صلاح الدین کی سنگٹھن حزب المجاہدین کشمیر کی ستھانیہ اور طاقتور سنگٹھن خیال کی جاتی ہے. ماجد جہانگیر, بی بی سی, سری نگر.
یہ بی بی سی ہے, آپ دن بھر سن رہے ہیں ریحان فضل کے ساتھ. بہوجن سماج پارٹی نے اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع میں آج اپنی منڈلی ریلی کی. ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے بی ایس پی نیتا مایاوتی نے کیندر اور راج کی بی جے پی سرکاروں پر جم کر حملہ بولا. ان کے نشانے پر سب سے زیادہ کیندر کی مودی سرکار رہی. پچھلے دنوں راجیہ سبھا سے استعفیٰ دینے کے بعد مایاوتی نے ہر منڈل میں ریلی کرنے کی گھوشنا کی تھی. اس کرم میں یہ ان کی دوسری ریلی تھی. سمیر آتمت مشر کی رپورٹ.
ودھان سبھا چناؤ کے بعد مایاوتی نے اپنی پہلی منڈلی ریلی پشچمی یو پی کے میرٹھ میں کی تھی, تو دوسری ریلی کے لیے انہوں نے پوروی اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع کو چنا. ریلی میں مایاوتی نے کیندر سرکار پر جم کر حملہ بولا اور کہا کہ کیندر سرکار ابھی تک اپنے چناوی وعدوں کو پورا نہیں کر سکی ہے. مایاوتی نے اپنے بھاشن میں سہارنپور میں پچھلے دنوں ہوئی ہنسا کا خاص طور پر ذکر کیا اور آروپ لگایا کہ بی جے پی نے ان کی ہتیا کرانے کی سازش رچی تھی.
اور اس کے بعد پھر انہوں نے پورے دیش میں تو بی ایس پی کے خاص کر دلت بیس ووٹ میں اپنی پینٹ بنانے کے لیے اپنے آر ایس ایس سے جڑے ایک دلت کو دیش کا راشٹرپتی پد کا امیدوار انہوں نے بنا دیا.
مایاوتی کے نشانے پر راجیہ کی یوگی سرکار بھی رہی. انہوں نے طنز کسا کہ پوروانچل کا وکاس تبھی ہوگا جب یوگی جی کو مندروں سے فرصت ملے گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ مایاوتی نے نہ تو سماجوادی پارٹی کا کوئی ذکر کیا اور نہ ہی کانگریس پارٹی پر حملہ ہوئی. ان کے نشانے پر صرف بھارتیہ جنتا پارٹی ہی تھی. مایاوتی نے ودھان سبھا چناؤ کے دوران ای وی ایم میں ہوئی کتھت گڑبڑی کا مدعا ایک بار پھر اٹھایا اور کہا کہ اس بارے میں سپریم کورٹ سے انہیں سنتوش جنک جواب ملا ہے.
پہلے انہوں نے ارتھات بی جے پی اینڈ کمپنی کے لوگوں نے سن 2014 میں دیش میں لوک سبھا کے ہوئے عام چناؤ میں ای وی ایم میں گڑبڑی و بےمانی آدی کر کے یہاں سبھی ویرودھی پارٹیوں کو کافی زیادہ راجنیتک نقصان پہنچایا ہے, جس میں ہماری پارٹی بھی شامل ہے. ای وی ایم میں جو انہوں نے اس بار ودھان سبھا کے عام چناؤ میں گڑبڑی کی, بےمانی کی, اس کو دیش میں آگے ہونے والے چناؤں میں ان کی اس گڑبڑی و بےمانی کو روکنے کے لیے بھی پھر ہماری پارٹی کو سپریم
کورٹ
میں بھی جانا پڑا.
ودھان سبھا چناؤ میں ہار کے بعد مایاوتی کی یہ پردیش میں دوسری منڈلی ریلی ہے. اس ریلی میں اعظم گڑھ کے تحت آنے والے 11 ضلعوں کے کارکرتا شامل ہوئے. سہارنپور میں ہوئی ہنسا کے ورودھ میں مایاوتی نے 18 جولائی کو راجیہ سبھا سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اس کے بعد ہی ان کی پارٹی نے دلتوں پر ہو رہے حملے کے معاملوں کو سڑک پر اٹھانے کا اعلان کیا تھا. سمیر آتمج مشر, بی بی سی, لکھنؤ.
اور اب بات ان بھارتی کسانوں کی جو ودیشی زمین پر کھیتی کر رہے ہیں مگر وہاں بھی شاید ان کی حالت ویسی ہی ہے جو بھارت کے کسانوں کی ہے. یہ داستان ہے بہتر زندگی کی آس میں 7 سمندر پار کر اٹلی پہنچے کچھ بھارتیوں کی. وہ ایجنٹوں کو موٹا پیسہ دے کر وہاں پہنچے اور اب غلاموں جیسی زندگی جینے پر مجبور ہیں. بی بی سی سنواداتا راہل جوگلیکر کی رپورٹ سنا رہے ہیں محمد شاہد.
امندیپ, جن کا اصلی نام کچھ اور ہے, تقریباً 8 سالوں سے اٹلی میں کھیتی کر رہے ہیں. अवैध एजेंटों को करीब 10 लाख रुपए देकर वो पंजाब के जालंधर से इटली के लाटीना इलाके में आए थे। उन्हें लगा था कि देश छोड़ने के साथ ही गरीबी से भी पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
तकरीबन सभी दे के आते हैं यहाँ पे 8-10 लाख रुपया, और जहाँ इटली में उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ना कोई 1 साल ना कोई 2 साल, कहीं ऐसा है कि 5-6 साल तो 10 लाख ही पूरा नहीं होता। कई मालिक तो ऐसे हैं कि पैसे भी नहीं पूरे दे रहे, 1 महीने में 1000 यूरो बना है तो उसको 300 दे दिया, 400 दे दिया, 200 दे दिया।
अमनदीप को इतने सालों के बाद वीजा मिल गया और अब वह कानूनी तौर पर इटली में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें स्थानीय बदमाशों का डर रहता है। लाटीना प्रांत के तकरीबन हर दूसरे खेत में आपको भारतीय मजदूर काम करते दिखेंगे, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन वो सामने आकर बात करने से डरती हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट भी की जाती है। हजारों नौजवान पंजाब और उत्तर भारत के अन्य इलाकों से इटली में रोजगार की खोज में आते हैं, लेकिन यहाँ आकर महसूस करते हैं कि वो शोषण और कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। अक्सर उनके लिए आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं होता, लेकिन एक इतालवी शख्स हैं जो इन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्को मिजोलो इटली में प्रवासी लोगों के लिए काम करने वाली एक संस्था चलाते हैं। बीते साल उन्होंने इटली में भारतीय मजदूरों के साथ प्रदर्शन किया था। उनका अंदाजा है कि करीब 30,000 भारतीय किसान खेती करते हैं। उनके शोध के अनुसार कई मजदूर अब अवैध पदार्थों का सेवन करने लगे हैं।
शोषण का तरीका लटीना में बदल रहा है। हमने जब सर्वे किया तो हमें पता चला कि मजदूर ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, कई अलग प्रकार के ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन चिंता की बात तो ये है कि यहाँ नशा करने के लिए नहीं बल्कि काम का बोझ सहने के लिए ऐसे पदार्थ लिए जा रहे हैं।
लाटीना के मेयर डेमेनियो निकोलेटा ने हमें बताया कि 2 साल पहले एक छापा अभियान में भारतीय मजदूर पकड़े गए थे। उनमें से 70% मजदूर अवैध तरीके से यहाँ आए थे।
मेरे ख्याल से ये समस्या कितनी गंभीर है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। राजनेता इस समस्या को सुलझाना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ कि इस समस्या का हल निकलेगा जब लोग जागरूक होंगे।
ये थे डेमेनियो निकोलेटा के शब्द। सुनहरी रेत वाले समुद्री तटों और हरे भरे खेतों के साथ लाटीना एक खूबसूरत पर्यटक स्थल लगता है। ये बेशक पर्यटन के लिए एक बढ़िया जगह है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर 4 अन्य लोगों के साथ अमनदीप भी रहते हैं, जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी उनका इटली में रहने का सपना बरकरार है।
इटली में भारतीय किसान। अब कहानी उस मुक्केबाज माँ की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमदार जीतों से कई रूढ़ियों को तोड़ रही है। 38 साल की अरुणा मिश्रा 2 बेटियों की माँ हैं और हाल ही में वो तीसरी दफा विश्व पुलिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर लौटी हैं। उनकी राह में उलझने और बाधाएं भी कम नहीं रहीं। रांची से नीरज सिन्हा की ये रिपोर्ट सुनिए।
अरुणा झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं। साल 2000 में जमशेदपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने मुक्केबाजी सीखना शुरू किया। 2003 में वो इंडिया टीम के लिए चुनी गई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
फिर मैंने बहुत मेहनत की, उसके बाद फिर 2003 में मुझे इंडिया कैंप मिला। और 2003 में जब मुझे इंडिया कैंप मिला तो मैं बहुत मेहनत करके गई थी, और इंडिया कैंप में मैंने ठान लिया था कि इंडिया कैंप जाऊंगी तो फिर इंडिया टीम में बाहर जाऊंगी, क्योंकि मुझे कैंप करके लौटना नहीं है।
विश्व पुलिस चैंपियनशिप के अलावा 3 दफा वो विश्व महिला मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। वे एशियन चैंपियन भी रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडलों की उन्होंने झड़ी लगाई है। लॉस एंजिल्स से गोल्ड मेडल जीतकर वापस जमशेदपुर लौटने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। पुलिस के आला अधिकारियों और मुख्यमंत्री ने भी उनकी तारीफ की। हालांकि कई मौके पर पुलिस महकमे में वो हैरान परेशान होती रही है। ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब एक अधिकारी ने उनके मेडलों और नियुक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। तब एक नामी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए चयन के बाद भी उन्हें दोबारा ट्रायल देना पड़ा था।
परेशान करने के लिए उन्होंने हर कदम पर मुझे तंग किया और हर कदम पे मुझे टॉर्चर किया, जैसे मैं टॉर्चर हमेशा होते रहे। लेकिन मेरे मनोबल इतने अब थे कि मैं कभी अपने मनोबल को टूटने नहीं दी। लेकिन उन्होंने विभाग की तरफ से हमेशा मुझे परेशान किया।
अरुणा की बहन तरुणा मिश्रा मुक्केबाजी में राष्ट्रीय स्तर पर कोच है। उम्र की इस दहलीज पर अरुणा कैसे घर बाहर सब कुछ संभालती हैं, इस बारे में तरुणा बताती हैं।
वो तो वो उम्र का कोई ये नहीं रहता है। अब वो मेहनत, वो टूर्नामेंट के हिसाब से मेहनत करती हैं। जैसा जैसा टूर्नामेंट रहता है उस हिसाब से उसका मेहनत रहता है। और उसी हिसाब से वो घर भी देखती हैं, अपना परिवार भी देखती हैं और सारा कुछ उसी में मैनेज कर करके चलती हैं।
वरिष्ठ खेल पत्रकार समीम जमशेदपुरी अरुणा के खेल को लंबे समय से देखते रहे हैं। वो बताते हैं,
अंदर एक जुझारूपन दिखता है और जो इसके प्रतिद्वंदी होते हैं वो इसके सामने टिक नहीं पाते हैं। इसकी आंखों में एक चमक है, मैं तो इसे बहुत पहले से देख रहा हूँ। शुरू में हैंडबॉल में आई, फिर एथलेटिक की, लेकिन सब जगह सफलता मिली इसको। लेकिन जब बॉक्सिंग के रिंग में पहली बार जब ये उतरी थी तभी हमने इसके जो अपीयरेंस होता है रिंग में जो उतर का जो चाल और जो वार्म अप जो की ना होता, हमको लगा कि ये वाकई बॉक्सिंग के लिए पाएगा। पहली
अरुणा की दो बेटियां हैं और पति चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुक्केबाज बहू को परिवार में लोग किस तौर पर देखते हैं, इस सवाल पर वो हंसकर जवाब देती हैं।
ये मैं कैसे बताऊं, लेकिन जब मैं ससुराल गई थी तो मुझे सब बहुत मानते थे। ये नहीं कि मैं बॉक्सर हूँ इसलिए मानते थे, मैं उस घर की बहू थी इसलिए लोग मानते थे। उन मेरे जाने के बाद उनको पता चला कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैं अच्छे लेवल की खिलाड़ी हूँ, तो उन्होंने मुझे, मेरे ससुर ने मुझे आदेश दिया कि इसको ज्यादा दिन यहाँ नहीं रखो, इसको जहाँ जाना है उसको भेज दो।
हालांकि बातचीत में उनका दर्द भी छलका। दरअसल पुलिस में ड्यूटी की वजह से अभ्यास करने के लिए मुकम्मल वक्त नहीं मिलता, लिहाजा उनके सवाल भी हैं कि तेजी से संभलना और लड़खड़ाना कब तक, क्योंकि रिंग में सामने वाला यह पंच ये नहीं पूछता कि आप किन परेशानियों से गुजर कर आई हैं। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
और अब खेल गतिविधियों पर एक नजर।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर शूटिंग के खेल की। ISSF विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम ने पहला गोल्ड मेडल जीता। मशहूर शूटर जीतू राय और हीना सिंधु की जोड़ी ने भारत के लिए ये मेडल जीता। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में ये सफलता हासिल करी। फ्रांस के शूटर को हराकर भारत को पहला गोल्ड दिलाया। ISSF विश्व कप में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिश्रित टीम स्पर्धा को शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार इस इवेंट को जोड़ा जाएगा। अब खबर क्रिकेट की दुनिया से। कल पुणे में इंडिया बनाम न्यूजीलैंड 3 ODI सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। इस सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 6 विकेटों से हराया था, जिसमें टॉम लैथम ने 102 बॉलों में 103 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जीत दिलाई थी। अब खबर फुटबॉल की दुनिया से। भारत में हो रहे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कल से शुरू होगा। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला जहां ब्राजील बनाम इंग्लैंड होगा, तो वहीं दूसरा मुकाबला माली बनाम स्पेन। लंदन में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2017 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस साल के बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड रियल मैड्रिड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला। रियल मैड्रिड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने प्रतियोगी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर 5वीं बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता। पुरस्कार जीतने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फैंस को शुक्रिया अदा किया।
दिस इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, आई नाउ हैव फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। So, thank you a lot for the support.
इस पुरस्कार को जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि मेरे फैंस पूरी दुनिया में हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे लिए गर्व की बात है कि ये पुरस्कार मुझे महान खिलाड़ियों के बीच मिल रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
Thank you very much and have a good night.
जहाँ पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम रहा, तो वहीं महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब लीक मार्टिन्स को मिला। इस साल के बेस्ट फीफा मेंस कोच का अवार्ड जिनेडीन जिडान को मिला, तो वहीं बेस्ट फीफा विमेंस कोच सरीना विगमन को मिला। खेल की दुनिया से बस इतना ही, नमस्कार।
सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने नेता और देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को माओ त्से-तुंग के बाद अपना सबसे शक्तिशाली नेता बना दिया है। केन्या में सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा कि गुरुवार को होने वाले चुनाव पहले से तय कार्यक्रम के तहत हो सकते हैं या नहीं। जर्मनी की नवनिर्वाचित संसद का बर्लिन में पहला सत्र शुरू हो गया। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।